सूरत के अंदर भी 13 आयात में, ये भी छोटी सूरत है, 28वें पारे के अंदर, बहुत बड़ी सूरतें नहीं हैं, यहाँ से सूरतों की जो लेंथ है वो छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो अभी हमने सूरह मुजादिला की कुल 13 आयात में से 6 आयात की तिलावत करी आपके सामने। तो इसका तर्जुमा और खुलासे तफसीर पढ़ने से पहले हम इसका सबब नुज़ूल पढ़ लेते हैं। शान नुज़ूल, सबब नुज़ूल, यानी कुरान की आयात का जो पस मंज़र होता है, बैकग्राउंड होता है जिनमें वो नाज़िल हुई हैं, उनको शान नुज़ूल या सबब नुज़ूल नुज़ूल कहा जाता है। तो इसमें मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस सूरत की इब्तदाई आयात के नुज़ूल का सबब, यानी ये जो 6 आयात हैं ये इब्तदाई पोर्शन है इस सूरत का, तो इनका सबब नुज़ूल एक ख़ास वाक़या है कि हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा अपनी बीवी खौला को ये कह दिया था कि अंती अलैया का वाहिर उम्मी, कि तू मेरे हक में ऐसी है जैसे मेरी माँ की पुश्त, यानी हराम है, मेरी माँ के जैसे है तुम। ठीक है, तो हज़रत सल्लम की बैसत से पहले ज़माने जाहिलियत में ये लफ्ज़ अबदी और दाइमी हुरमत के लिए बोले जाते थे, जो तलाक़ मुग़ल्लज़ा से भी ज़्यादा सख्त है। ठीक है, यानी ज़माने जाहिलियत में जब तक दीन इस्लाम की शरीयत नहीं आई थी, तो उससे पहले ये अल्फाज, उस वक्त कोई शोहर अपने बीवी से कहता था कि जब वो हमेशा हमेशा के लिए बीवी को ना अपने से दूर कर देना चाहता था, ठीक है, यानी उसको उससे ताल्लुक ख़त्म कर देना चाहता था, तो वो ऐसे अल्फाज बोलता था कि तू तो मेरी माँ के जैसे है। ठीक है, तो ये जो होता था ये तलाक़ मुग़ल्लज़ा से भी ज़्यादा सख्त होता था, यानी तलाक़ मुग़ल्लज़ा में, यानी तलाक़ मुग़ल्लज़ा का मतलब होता है तलाक़ की मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, एक तलाक़ रिजी होती है जिसमें रुजू किया जा सकता है, ठीक है, और दूसरी तलाक़ बाइन होती है, एक तलाक़ मुग़ल्लज़ा होती है। ठीक है, अब ये इनकी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इन सब के बारे में, और वो एक मुस्तकिल टॉपिक भी है और वो फ़िक़्ह का टॉपिक भी है। ठीक है, तो उसके तफसील के अंदर तो अभी हम नहीं जाएंगे, बस जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही कवर करेंगे, क्योंकि उसके लिए अच्छा खासा मुताला भी चाहिए पढ़ाने के लिए, तो उसमें मैं कोई अपनी तरफ से गलत बात कह दूँ वो भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि उसका अलग से मुताला नहीं किया है फ़िलहाल रिफ़्रेश करने के लिए। दूसरा ये कि ये तलाक़ के मसाइल अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसके लिए तो हम वैसे भी मुफ्ती हजरात के पास ही लोगों को रेफ़र कर देते हैं। अगर कोई हमसे पूछे भी ना तो भाई मुफ्ती साहब का नंबर दे देते हैं, उनको फ़ोन करें, उन्हीं से बात करें, क्योंकि उन लोगों के सामने ये मसाइल आते रहते हैं, उनके जहन में भी फ्रेश रहते हैं ये। तो इस वजह से तलाक के मसाइल तो अभी आपके सामने नहीं रख सकते, तो इस वजह से बस इतना ही समझ लें कि तलाक़ मुग़ल्लज़ा के अंदर तो फिर भी देर इज़ अ चांस टू कम बैक, ठीक है, यानी मियाँ बीवी दोबारा से एक साथ रहने शुरू हो जाए इसका फिर भी कुछ चांस होता है। लेकिन ये जो अल्फाज कहते थे ना, इसमें तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं होता था, ठीक है। तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्ह ये वाक़या पेश आने पर हज़रत रसूल की खिदमत में इसका हुक्म शरई मालूम करने के लिए हाजिर हुई। इस वक्त तक इस खास मसले के मुतालिक हज़रत रसूल पर कोई वही नाजिल नहीं हुई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल मशहूर के मुवाफिक उनसे फरमा दिया, यानी जो उस ज़माने का मशहूर कौल था, मशहूर जो मारूफ बात थी लोगों के दरमियान मशहूर, कि भाई इस तरह से कह देने से तो हमेशा हमेशा के लिए हुरमत हो जाती है, हराम हो जाती है बीवी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि कोई वही नाजिल नहीं हुई थी तो फरमा दिया कि माँ अराकी, कि मैं नहीं देखता तुमको, इल्ला कद हरमती अलैही, मैं नहीं देखता तुमको सिवाय इसके कि तुम उनके ऊपर हराम हो गई हो, यानी अपने शौहर के ऊपर हराम हो गई हो। तो मेरी तो यही राय है। तो ये सुनकर वो वावेला करने लगी कि मेरी जवानी सब इस शौहर की खिदमत में ख़त्म हो गई, अब बुढ़ापे में उन्होंने मुझसे ये मामला किया, मैं कहाँ जाऊँ। यानी ये जो खौला रज़ियल्लाहु थी और उनके जो शौहर थे ये बहुत बूढ़े लोग थे, बूढ़े सहाबी थे, ठीक है। तो इन्होंने फिर यानी इस तरह से बात शुरू कर दी कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या बनेगा, इस तरह से कहते हैं ना, तो मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा। हालांकि इनके बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे, लेकिन माँ के लिए तो बच्चे हमेशा हमेशा बच्चे ही रहते हैं ना, तो वो चाहे 40 साल का भी बच्चा हो जाए, 50 साल का भी हो जाए, तो फिर भी वो उसका बच्चा ही रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से उसको फिक्र रहती है माँ को अपने बच्चों की, जैसे छोटेपन में थी। तो इसी वजह से इनको भी फिक्र यही हुई कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, भैया बूढ़े बाप ने क्या करना था भैया बच्चों का, वो उनको थोड़ी उनके लिए कफारत करते होंगे। बहरहाल माँ को तो बहरहाल बच्चों की फिक्र रहती है। अच्छा, एक रिवायत में है कि खौला ने अर्ज़ किया कि माँ ज़करा तलाकन, यानी मेरे शोहर ने तलाक का तो नाम भी नहीं लिया, तो तलाक कैसे हो गई, क्योंकि तलाक के मसाइल तो उस वक्त तक नाजिल हो चुके होंगे, तो मुसलमानों को पता है ना कि भाई इस तरह से तलाक होती है, तो इन्होंने तो तलाक का नाम नहीं लिया, तो फिर कैसे ये हुरमत हो गई। यानी बड़े इन्होंने इल्मी बात करी ना कि भाई जब शरीयत के अंदर बीवी को जुदा करने के लिए तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो अब ये एक नए लफ्ज़ से, यानी एक ऐसे लफ्ज़ से जो कि तलाक की डेफिनेशन में आता ही नहीं है, इसे कैसे तलाक हो गई, ठीक है। कौले मशहूर के मवाफिक का क्या मतलब है? कौले मशहूर के मवाफिक का मतलब ये है कि उस ज़माने में जो मशहूर बात थी, लोगों में जो अंडरस्टैंडिंग थी कि इस तरह के अल्फाज कहने से बीवी हराम हो जाती है, ठीक है। तो यानी ये देखें, ये एक ऐसा मसला है कि जिसके बारे में ना कोई शरी हुक्म पहले नहीं था, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को कत्ल कर दिया तो अब अगर लोगों में मशहूर हो गया कि भाई अगर अमीर ने गरीब को कत्ल किया है तो अमीर पर कोई मुआवजा नहीं है, कोई अमीर के ऊपर मसला नहीं है, अमीर बस गरीब को कत्ल कर सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना, कत्ल कर देना किसी गरीब को, तो इवन अगर उस सोसाइटी के अंदर ये बात मशहूर होती भी कि भाई कोई बात नहीं, अमीर गरीब को कत्ल कर दे, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये ऐसा मसला था कि जिसके ऊपर पिछली शरीयतों के अंदर, पिछले नबियों की शरीयत के अंदर बात मौजूद थी कि आप बगैर किसी यानी रीजन के बंदे को कत्ल नहीं कर सकते, ठीक है ना, बगैर किसी शरी रीजन के आप बंदे को कत्ल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अगरचे के मुआशरे के अंदर ये मशहूर हो जाए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये हो जाए कि अमीर गरीब को मार दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चूंकि पिछली शरीयतों की प्रेसिडेंस मौजूद थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौले मशहूर के मुताबिक फैसला नहीं दे सकते कि भाई हाँ ठीक है, गरीब को अमीर ने मार दिया, तो चूंकि अभी तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया, तो इस वजह से, यानी क्योंकि अभी तक मेरे ऊपर अल्लाह का हुक्म नहीं आया, तो इस वजह से जाओ जाकर के मदद करो, राइट, ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते थे। लेकिन वो कत्ल का मामला था, ठीक है। लेकिन ये वाला मामला कि कोई शौहर अपनी बीवी को ऐसे कह दे, तो इसके ऊपर कोई प्रेसिडेंस भी नहीं थी कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ गलत है। तो इस वजह से ना ऐसे मामले के अंदर जिसके अंदर के कोई प्रेसिडेंस ना हो, तो उसमें जो है वो मुआशरे का जो यानी एक राइट्स तरीका है ना, तो वही तरीका बरकरार रखा जाता है, ठीक है ना, उसी को कंटिन्यू किया जाता है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। लेकिन यहाँ पर देर वॉज नो स्टेटमेंट अदरवाइज, ठीक है, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मशहूर अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही उनको फरमा दिया कि भाई तुम तो हराम हो गई अब अपने शौहर के ऊपर, क्योंकि शौहर ने तुमको एक ये अल्फाज कह दिए। ठीक है, क्या मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया या आप कुछ और पूछना चाह रहे थे, मैंने कुछ और कह दिया? मवाफिक का मतलब है ना मवाफिकत, यानी अकॉर्डिंग टू दी प्रेवलेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। अच्छा ये हुआ, फिर उसके बाद फरमाते हैं कि उन्होंने ये कहा ना कि जी फिर कैसे तलाक हो गई, इन्होंने तो तलाक का लफ्ज़ ही नहीं लिया। अच्छा एक रिवायत में ये भी है, यानी एक हदीस मुबारक के अंदर ये भी है कि खौला रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला से फरियाद की कि अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका, कि ए अल्लाह मैं आपसे शिकायत करती हूँ, मैं डायरेक्ट आपसे शिकायत करती हूँ, यानी अपनी जो अर्ज गुजाश्त है वो मैं डायरेक्ट आपके दरबार में पेश करती हूँ। ठीक है, नबी ने तो ऐसा फरमा दिया, ठीक है, लेकिन नबी जो हैं वो तो नबी अल्लाह ताला ने ना मुख्तलिफ रीजंस के लिए रखे हैं, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है नबी की, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है नबी का, लेकिन नबी जो है वो अल्लाह ताला को रिप्लेस नहीं करता। ठीक है, नबी अल्लाह ताला को रिप्लेस नहीं करता कि बस अब सब कुछ नबी से ही होगा, अब अल्लाह ताला से तो बातचीत नहीं हो सकती है भाई, ठीक है ना, अब अल्लाह ताला से तो दुआ भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला से जो है वो इल्तिजा भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के साथ जो है वो इखलास का मामला भी नहीं कर सकते, क्योंकि नबी आ गए, अब सब कुछ जो करना है नबी के साथ करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से दुआ का सिलसिला जो है ना, ये नबी के आने के बावजूद बरकरार रहता है। ठीक है, जैसे कि इस वाकये के अंदर भी हुआ खौला रज़ियल्लाहु, और एक दूसरा वाकया किसी को याद है, एक दूसरा वाकया जिसके अंदर के ऐसे ही हुआ था कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फैसला सुना दिया था या कुछ बात कर दी थी, लेकिन फिर डायरेक्ट। जी बिल्कुल माशाल्लाह, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला वाकया, ठीक है ना, वाकया इफ के अंदर भी आयशा रज़ी अल्लाह ताला के साथ ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो दुआ वाला सिलसिला ये डिसकंटिन्यू नहीं होता नबी के आने से, या शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाने की वजह से दुआ ये नहीं होती कि दुआ आप शेख से मांगना शुरू हो गए, ठीक है ना, वो तो बदअकीदगी है, बद यानी इतकाद की खराबी है कि भी शेख से जो है वो दुआ मांगना शुरू हो गए। ठीक है, ये नबी अलैहि सलाम और सहाबा का रिश्ता क्या था, ये रिश्ता भी शेख और मुरीद वाला ही रिश्ता था। ठीक है, सहाबा जो है वो मुरीद थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख थे। ठीक है, लेकिन मुरीद और शेख का रिश्ता ये बंदे और परवरदिगार के रिश्ते को कैंसिल आउट नहीं कर देता, ठीक है, इसको ख़त्म नहीं कर देता। ओके, तो यही हुआ कि उन्होंने फिर अल्लाह ताला से डायरेक्ट दरख्वास्त कर दी, क्योंकि पहले तो इल्म के लिए नबी के पास जाते हैं ना कि भाई शरी मसला बताएं, क्योंकि ये जो एक्वायर्ड इल्म कहते हैं इसको, एक वो इल्म होता है जो कि इंसान पैदाइश में साथ लेकर के आता है, ठीक है ना, वो पैदाइश में कौन सा वाला इल्म साथ लेकर के आते हैं, पैदाइशी इल्म क्या होता है, कोई बताएगा? पैदाइशी इल्म जो बगैर नबी के मिलता है, वो इंसान क्या लेकर के आता है? मुर्गी का बच्चा जब पैदा होता है तो वो सारा इल्म साथ लेकर के आता है, मुर्गी उसको कुछ नहीं सिखाती, ठीक है, मुर्गी उसको चलना नहीं सिखाती, वो खुद ही एक दिन के बाद चलना शुरू कर देता है, मुर्गी उसको खाना भी नहीं सिखाती, शायद एक दो टेक्निक जो हैं वो मुर्गी उनको कुछ सिखाती होगी, बिल्ली से बचने वाली टेक्निक वगैरह शायद, ठीक है ना, लेकिन वो भी अगर आप चूजे को बगैर मुर्गी के ही पालना शुरू कर दें तो चूजा भी बिलाखिर वो सीख ही जाता है बिल्ली से कैसे बचा जाता है बड़े होने के बाद। ठीक है, तो यानी मुर्गी का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, हाथी का बच्चा, राइट, और मगरमच्छ का बच्चा और मछली का बच्चा, इसको कोई एक्वायर्ड इल्म की जरूरत नहीं होती, ये तो पैदाइशी सारा का सारा इल्म लेकर के आया होता है, इसके लिए कोई मदरसा भी नहीं होता, कोई स्कूल भी नहीं होता, कोई मुफ्ती साहब भी नहीं होते, कोई मौलवी साहब भी नहीं होते। ठीक है, तो जो इंसान का बच्चा पैदा होता है ना, इंसान के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, इंसान के बच्चों को अल्लाह ताला ने बहुत कम इल्म दे करके भेजा होता है, उस इल्म को फितरत का इल्म कहते हैं, फितरत, फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، فطر الناس علیہا کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اس فطرت کے اوپر. یہ فطرت کیا ہے؟ کہ یہ فطرت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دے کر کے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وَحَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْن، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نجدین کی طرف اس کو ہدایت دے دی کہ بھئی کون سا فطرتاً کون سی چیز جو ہے وہ اچھی ہے اور کون سی چیز غلط ہے، جس کو انگریزی میں ورچوز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو سچ اچھا لگتا ہے، جھوٹ برا لگتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کے ساتھ لوگ سچ بولیں تو اس کو اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ لوگ جھوٹ بولیں تو اس کو برا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میں اس کے ساتھ کا آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں حدیث کلاس کے اندر، کہ دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا اس کو برا نہیں لگتا. نہیں، میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے اس کو برا لگتا ہے، اور میرے ساتھ جو سچ بولے اس کو اچھا لگتا ہے. میرے اوپر کوئی ظلم کرے تو برا لگتا ہے، اور میرے ساتھ کوئی شفقت کا معاملہ کرے تو اس کو اچھا لگتا ہے. تو یہ نا فطرت ہے انسان کی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. امانت دار انسان اس کو اچھا لگتا ہے، جو اس کے ساتھ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے وہ اس کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا فطرت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، بس اتنا ہی ہے انسان کے پاس. باقی جتنا علم اس کو ملتا ہے وہ ایکوائرڈ علم کہلاتا ہے، یعنی حاصل کیا ہوا علم. تو وہ حاصل کیا ہوا علم سب سے پہلے ماں باپ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ماں باپ کے بعد پھر خاندان کے دوسرے گھر کے جو دوسرے افراد ہوتے ہیں ان سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ماحول، یعنی پاس پڑوس کے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جس قسم کے معاملات یہ آبزرو کرتا ہے، پھر اس سے بھی اس کو علم حاصل ہوتا ہے. پھر مصیبت ماری آج کے دور کے اندر، بلکہ آج تو کیا، آج سے 100 سال پہلے سے یہ جو ٹیلی ویژن آ گیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ٹیلی ویژن بھی اس کو علم دے رہا ہوتا ہے، دنیا جہاں کا خرافات کا علم جو ہے وہ ٹیلی ویژن بھی اس کو دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آج کل جو سیل فون، یہ بھی اس کا علم دے رہا ہوتا ہے. یہ سارا ایکوائرڈ علم ہے، ٹھیک ہے. تو نبی جو ہوتے ہیں وہ ایکوائرڈ علم کے لیے انسانوں کے پاس بھیجے گئے، ٹھیک ہے. تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے پاس کس بات کے لیے گئی تھیں؟ ایکوائرڈ علم حاصل کرنے کے لیے گئی تھیں کہ یہ جو میرے شوہر نے میرے ساتھ کر دیا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ ان کو عقل کے ذریعے سے نہیں پتا ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے. مراقبے میں بیٹھ جائیں اور سوچنا شروع کر دیں کہ جی اس میں کیا اب ہونا چاہیے، یا استخارہ کی دعا پڑھنی شروع کر دیں، نہیں. یہاں پہ استخارہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے. یہاں پہ مراقبے نہیں چلتے، یہ مراقبے والی جگہ نہیں ہے، یہ استخارے والی جگہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پوچھنا پڑے گا، عالم سے پوچھنا پڑے گا. اگر نبی سامنے ہے تو نبی سے پوچھنا پڑے گا، اس لیے کہ بھائی عالم ہے آپ کے زمانے کا، ٹھیک ہے. تو یہ دو مختلف قسم کے علم ہوتے ہیں، ایک فطرت والا علم ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ حاصل کیا ہوا علم ہوتا ہے، سیکھا ہوا علم ہوتا ہے. اچھا، تو بہرحال، تو آگے فرمایا کہ تو جب انہوں نے کہا نا، یہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کری، تو اچھا ایک اور روایت، یعنی ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ مَا أُمِرْتُ فِي شَأْنَكِ بِشَيْءٍ حَتَّى الْآنَ، کہ یعنی ابھی تک تمہارے مسئلے کے متعلق مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ان سب روایات میں کوئی تضاد و تعارض نہیں ہے، سبھی اقوال صحیح ہو سکتے، ٹھیک ہے. یعنی سب مختلف احادیث ہیں جو کہ مختلف صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سن کر کے، یا دیکھ کر کے، یا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر کے ان باتوں کو آگے ریلیٹ کیا ہوگا، نیریٹ کیا ہوگا. تو یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں یہ غلط ہے وہ صحیح ہوگا، وہ صحیح ہوگا تو یہ غلط ہوگا. نہیں، یہ ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں اپنے اپنے ٹائم پر، کہ کبھی یہ کہا تھا اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا تھا اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا تھا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سبھی اقوال صحیح ہو سکتے ہیں. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، قضا فی الدر المنثور و ابن کثیر. تو یہ ان دونوں کتابوں کے اندر یہ اس کا شان نزول لکھا ہوا ہے. اس لیے اس سورت کی ابتدائی آیات میں ان اس خاص مسئلے کا، جس کا نام ظہار ہے، حکم شرعی بیان فرمایا گیا ہے، جس میں حضرت تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہا کی فریاد سنی اور ان کے لیے آسانی فرما دی. ان کی وجہ سے حضرت تعالیٰ نے قرآن میں یہ مستقل احکام نازل فرما دیے، اسی لیے حضرات صحابہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی ازواج مطہرات میں سے بھی نہیں تھیں، ٹھیک ہے. تو پھر بھی ان کے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کے خاص مسئلے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی. تو اس وجہ سے بڑی کیا بات ہے آپ کی، تو اس وجہ سے بڑا احترام کرتے تھے. ایک روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع کے ساتھ چلے جا رہے تھے، یہ عورت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں، کچھ کہنا چاہتی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں ٹھہر کر ان کی بات سنی. बाज लोगों ने कहा कि आपने इस बुढ़िया की खातिर इतने बड़े मजमे को रोके रखा, कितने सारे पीछे सहाबी होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, तो सबको रोके रखा। अमीर उल मोमिनीन जी खड़े होकर के बूढ़ी औरत से बात कर रहे हैं, तो आप सजन ने फरमाया कि खबर भी है ये कौन है। ये वही औरत है कि जिसकी बात अल्लाह ताला ने सात आसमानों के ऊपर सुनी थी, यानी सात आसमानों के ऊपर जो अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने इनकी बात सुनी थी। ठीक है, तो मैं कौन था कि उनकी बात को टाल देता। तखल्लुकु बे अखलाकिल्लाह, अल्लाह ताला के अखलाक से अपने आप को मुजयन करो, तखल यानी बल्कि तजयन हो बे अखलाकिल्लाह, मुजयन करो अपने आप को अल्लाह के अखलाक से। तो जब अल्लाह ताला किसी की बात इतना यानी अहमियत देते हैं किसी औरत की, तो मैं कौन होता हूँ कि उसकी बात की अहमियत ना दूँ। तो फरमाते हैं कि वल्लाही अगर ये खुद ही रुखसत ना हो जाती तो मैं रात तक उनके साथ यहीं खड़ा रहता। ये होते हैं ईमान वाले पक्के मोमिन। तो कितनी अहमियत देते हैं अल्लाह ताला की बात को, अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के जो मखसूस बंदे होते हैं, बंदियां होती हैं, तो ये फिर उनको भी उतनी अहमियत देते हैं कि जितनी देनी चाहिए। ठीक है, तो देखें ये दीन इस्लाम की ना ये ऐसी बातें हैं कि यानी एक ऐसा भी बंदा ना जिसको कि दीन इस्लाम की बात ही समझ में ना आती हो, तो इस इन चीज़ों को तो दो इवन जो यूनिवर्सलिस्ट टाइप के लोग हैं और ह्यूमैनिटी फर्स्ट टाइप के जो लोग होते हैं, तो ये तो वो भी इसका इनकार नहीं कर सकते ना कि दूसरे खलीफा हैं और आधी दुनिया को फतह कर लिया और उनका ये हाल है कि बूढ़ी औरत को जो है उसकी बात सुनने के लिए पूरे मजमे को ठहराए, यानी डोंट केयर, बस उसकी बात मैंने सुननी है। तो देखें ये जो आजकल जो शैतान ने औरतों को गुमराह किया हुआ है ना फेमिनिस्ट नारे के जरिए से, ठीक है कि जी बस औरत 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 और सारे दीन फेमिनिज्म के खिलाफ हैं और दीन इस्लाम तो फेमिनिज्म के सबसे ज़्यादा खिलाफ है। ठीक है, वो इस किस्म की कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी औरत तो औरत, बूढ़ी औरत, राइट, और ऐसी कि जिसका कि कोई बज़ाहिर मुआशरे के अंदर कोई ख़ास वैल्यू भी नहीं है, तो खलीफा वक्त और इतने बड़े खलीफा वक्त उसको इस तरीके से रिगार्ड करते हैं कि मैं रात तक उनके साथ यहीं पे खड़ा रहता। ठीक है, अगर वो खुद ना जाती तो ये इसको एहतराम इंसानियत और एहतराम निस्वानियत, इससे बढ़ के और क्या हो सकती है। खुलासा तफसीर, तो अब इसके तर्जुमे के साथ और खुलासा तफसीर लेके चलते हैं। तो पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कद समिअल्लाहु, तहकीक के अल्लाह ताला ने सुन लिया, कौला बात, अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, उसकी जो के झगड़ती थी अपने खाविंद के बारे में आपके साथ, यानी आपके साथ गोया कि वो आकर के एक तरह से बहस कर रही थी ना। अब देखें ये औरत भी हैं, औरत जात जो होती है वो जज्बात में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो वो अपने ना जज्बात को काबू नहीं रख सकती है, वो भूल जाती है अपने जज्बात में कि वो किससे बात कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से ना हमें भी बीवियों के साथ जो है ना ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हम हर वक्त ये ना कि भाई तेरी मजाल कैसी हुई कि तूने मेरे साथ ऐसी बात करी, तुझे पता नहीं है मैं तुम्हारा कौन हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम होगे शौहर, राइट, लेकिन मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ भाई। ठीक है, तो ये बीवियों के साथ ना इस किस्म की बातें नहीं चलती, ये खाली जहालत की अलामत होती है जो इस तरह की बातें करते हैं ना, ये सिर्फ पक्के यानी ये बेसिकली जहालत की अलामत होती है और इस ये बिल्कुल यानी दीन इस्लाम को गलत समझ करके लोग इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, वो खुद अपनी इज्जत करवाना, ठीक है ना, और इज्जत नफ्स की कुछ लोगों को ना वो डिजीज लगी हुई होती है इज्जत नफ्स, ठीक है ना, वो इज्जत नफ्स के बहाने जो है ना वो बेसिकली अपनी मिट्टी पलीत कर रहे होते हैं खाली, ठीक है, और अपने अपने लिए जहन्नुम को वाजिब कर रहे होते हैं इज्जत नफ्स के नाम पर। और फिर वो इज्जत नफ्स जो है वो हर एक से है, बीवी से तो क्या, वो तो अपनी फिर माँ से भी अपनी इज्जत नफ्स करवा रहे होंगे, अपने बाप से भी इज्जत नफ्स करवा रहे होंगे और अपने बड़ों से भी इज्जत नफ्स करवा रहे होंगे। ठीक है, तो ये धोखा होता है, ये शैतानी धोखे होते हैं। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर तकरीबन सब मुब्तला है, तकरीबन सब, ठीक है, इल्ला माशाल्लाह किसी का कोई घर होगा, कोई होगा शायद के जो ऐसा ना समझता हो। ठीक है, बड़े बड़े जो दीनदार बनते हैं, इबादत गुजार बनते हैं ना, वो ये सारी बातें नहीं पता होती उनको, बिल्कुल भी नहीं पता होती। ठीक है, तो भाई ये यानी औरत जात है कोई मामूली चीज़ नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी अहमियत दी है इसको, जैसे पिछले किसी क्लास में बात हो रही थी कि लोग समझते हैं कि जी मर्द को फौकियत दी है, तो मर्द को फौकियत देने का कुछ और मतलब है। औरत को तो अल्लाह ताला ने इतना यानी उसको मुकाम दिया है, इतना मुकाम दिया है कि अगर वो खुद समझ जाए अपने मुकाम को ना, तो फिर उसको उसको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना, वो इधर उधर देखना ही छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की तरफ देखे, कहीं ना देखे अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन सब तरफ देखना ही छोड़ दे, अगर वो समझ जाए खाली इस बात को कि उसको क्या मुकाम दिया अल्लाह ताला ने। फूलों से भी ज्यादा अहम मुकाम दिया उसको। फूल को कितना आप डेलिकेटली पढ़ते हैं कि पकड़ते हैं, कितना उसका एहतराम करते हैं, कितना उससे प्यार करते हैं, कितना उसको यानी मोहब्बत से देखते हैं, राइट। तो औरत को तो अल्लाह ताला ने फूल से भी ज्यादा अहम मुकाम दिया है। ठीक है, फूल से भी ज्यादा यानी पसंदीदा मुकाम दिया है। तो ये आकर के फिर अल्लाह के महबूब से तुजादिलू का आपसे झगड़ रही है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने हालांकि अपने महबूब से झगड़ रही है, लेकिन अल्लाह ताला इनको सुन रहे हैं और इनकी दादरसी कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि तेरी मजाल कैसे हुई मेरे महबूब से आकर के तूने लड़ाई करी है? नहीं भाई, ये औरत जात है। एक तो पहली बात तो ईमान वाली है, सबसे पहली बात तो ईमान वाली हो गई। अबू लहब की बीवी तो नहीं है ना ये? ठीक है, अबू लहब की बीवी तो मानने वाली नहीं थी ना, वो तो इनकार करने वाली थी, वो तो दुश्मन थी। ये कोई थोड़ी थी इनकार करने वाली, राइट। ये दुश्मन तो नहीं थी, ये तो ईमान वाली थी, ये तो मानने वाली थी। तो सबसे पहली बात तो मानने वाली थी, फिर उसके बाद ये औरत जात थी, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मजीद क्या कि बूढ़ी भी थी, और बूढ़ों का एहतराम करना तो हमारे दीन के अंदर लाजिम। जिसने बूढ़ों का एहतराम किया उसने गोया कि परवरदिगार का एहतराम किया। ठीक है, तो ये है हमारा दीन। तो अब अल्लाह ताला ने इनकी बात सुनी, व तश्तकी इलल्लाह, और ये यानी शिकायत करती थी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से शिकायत करती थी अपने रंज गम की। ठीक है, तो उन्होंने, आपने जो रेज हैंड किया ना, तो आप अपना सवाल यहाँ चैट विंडो पर लिख दें अगर आप कोई पूछना चाह रहे हैं कोई बात। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में खुलासे तफसीर में इसकी तफसीर क्या लिखी थी कि मसलन ये कहती थी मा ज़कर तलाकन, कि उन्होंने तलाक का लफ्ज़, तलाक का सीगा तो जिक्र ही नहीं किया, फिर हुरमत कैसे हो गई। तो ये है, झगड़ने से मुराद ये है कि वो एक तरह से ना नबी अलैहिस्सलाम से आर्ग्यू कर रही थी ना, यानी ये नहीं होगा कि कोई बहुत ही बुरी जुबान इस्तेमाल करी होंगी, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करी होंगी, लेकिन एक होता ना कि जैसे भाई किसी टीचर के पास आप जाते हैं तो खामोशी से उनकी बात सुनते हैं, बस सवाल कर लिया, उसकी बात पर उनके जवाब का इंतजार करते हैं और आगे से बहस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये काम ये नहीं कर रही थी, बल्कि ये आगे से जवाब भी दे रही थी, आगे से बहस भी कर रही थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फरमाते हैं कि मसलन ये कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु अश्कु इलैका, कि मैं तो अल्लाह आपसे अपनी शिकायत बयान करती हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अल्लाह ताला, वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और अल्लाह ताला सुनता था तुम्हारा आपस में सवाल जवाब। तहावुरकुमा, बाहिमी तुम दोनों की जो आपस में बातचीत हो रही थी ना, किनकी? नबी अलैहिस्सलाम की और हजरत खौरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। अल्लाह ताला उसको सुन रहा था। इन्नल्लाहा समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ देखने वाला है। आगे भी बड़े मजे का वाकया हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की जुबानी लिखा हुआ है कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैं वही मौजूद थी। ठीक है ना, थोड़े से फासले के ऊपर खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत कर रही थी, तो मैं उनकी बातों को सुन रही थी, लेकिन मैं इतना करीब होने के बावजूद जो है ना वो पूरी बात पिक नहीं कर पा रही थी। ठीक है ना, हर बात नहीं मेरे कान में पड़ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला खौला ताला ने की हर बात सुन रहे थे। ये आयशा सिद्दीका ताला ने फरमाया, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला तो समीउन बसीर है ना। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम, के वो लोग जो जिहार कर बैठे यानी माँ कह बैठे तुम में से अपनी औरतों को यानी अपनी बीवियों को, मा हुन्ना उम्महातिहिम, तो उन वो बीवियां उनकी माए नहीं बन जाती उनके कहने से। ठीक है, कहने से माँ नहीं बन जाती। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम, के उनकी माएँ तो वही हैं कि जिन्होंने उनको जना है यानी तौलीद किया है उनको। ठीक है, यानी बनाया है का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, पैदा है, पैदा किया है का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पैदा करना जो है ना उर्दू में तख्लीक के लिए भी बोला जाता है। तो माएँ अपनी औलाद को तख्लीक नहीं करती हैं। ठीक है ना, तख्लीक तो अल्लाह ताला करता है खाली, तो माएँ फिर क्या करती हैं? तो प्रॉपर लफ्ज़ जो है ना वो जन्ना ही है, बेशक हमारी आज के दौर की उर्दू में ये लफ्ज़ जो है वो इतना अच्छा नहीं समझा जाता हो। पाकिस्तानी लोग जो है ना वो स्पेशली कराची के जैसे शहर के रहने वाले वो जन्ने के लफ्ज़ को जो है ना कोई बहुत ही गंदी गाली टाइप की चीज़ समझते हैं, ठीक है। लेकिन उर्दू जुबान का यही प्रॉपर वर्ड है, राइट। बेयरिंग अ चाइल्ड का जो उर्दू तर्जुमा है ना प्रॉपर, वो जन्ना ही है। ओके, तो अरबी में इसको वलदना कहेंगे, वलदनहुम। अच्छा, व इन्नहुम लयकूलूना मुनकरम मिनल कौली वजूरा, कि ये लोग अलबत्ता एक नापसंदीदा बात कहते हैं, मुनकर बात यानी जिसका इनकार किया गया है, जिससे मना किया गया है, वो बात कहते हैं वजूरा और जूर, ठीक है। जूर कहते हैं झूठी झूठी बात को, ठीक है। ये एक नापसंदीदा बात कहते हैं और झूठी बात कहते हैं। वह इन लाफून गफूर, और बेशक अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है और बख्शने वाला है, ठीक है। तो ये दूसरी आयत मुकम्मल हो गई। अब इसके खुलासे तफसीर में इन्होंने अगर कोई एक्स्ट्रा बात लिखी है तो वो भी पढ़ लेते हैं, कि अल्लाह ताला तो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है, तो उसकी बात को कैसे ना सुनता। और कद समी अल्लाहू से खुदा ताला का मकसूद अपने लिए समिया साबित करना नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने ये वाली बात पिक कर ली, बल्कि मकसद यहाँ पर समिया कहने का ये है कि औरत की तकलीफ को ख़त्म कर दिया और उसकी आजजी को कबूल करना है, ठीक है। ये अल्लाह ताला से जो उन्होंने दुआ करी थी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनके मसले को हल कर दिया, यानी शरीय अहकाम नाजिल कर दिए। तो समिया से मुराद ये है कि कान में बात पड़ी नहीं, बल्कि वो तो अल्लाह ताला का की सिफत है, अल्लाह ताला तो हर ही चीज़ को सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर सुनने से मुराद जो है मसला सॉल्व कर देना, दाद रसी कर देना, ये मुराद है। अच्छा, तुम में जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, ठीक है। अब ये उसकी तफसीर चल रही है कि अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम वाली आयत की आयत नंबर 2 की, कि तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से इजहार करते हैं, मसलन यूँ कह देते हैं अंती अलैया का वाहर उम्मी, कि तू मेरे ऊपर मेरी माँ की पीठ के जैसे हैं। वाहर पीठ को कहते हैं, ठीक है। तो वो बीवियाँ उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी माएँ तो बस वही हैं जिन्होंने उनको जना है, इसलिए ये अल्फाज कहने से ये औरतें उनकी माएँ नहीं हो गईं, ताकि हमेशा की हुरमत मिसले माँ के साबित हो जाए, ठीक है। यानी कह देने से ना हमेशा की हुरमत साबित नहीं हो जाती है। ये थोड़ा सा उर्दू थोड़ा सा ज़रा पुराने अंदाज में इन्होंने लिखी है, लेकिन मतलब इसका यही है कि उनके कह देने से ना मकसद उनका यही होता है कि माँ की तरह साबित हो जाए मेरी बीवी, माँ की तरह बन जाए मेरी बीवी, लेकिन इससे वो माँ की तरह साबित नहीं होती है। और कोई दूसरा सबब भी दायमी हुरमत का किसी दलील से मुतहक्क नहीं है, ठीक है। यानी और भी कोई सबब दायमी हुरमत का नहीं होता बीवी के लिए, ठीक है। भाई बीवी तो वही बनती है ना कि जिसको के शरीयत ने आपके लिए जायज़ किया है बीवी बनाना, ठीक है। अब वो आप बहन से तो शादी कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। भतीजी भांजी जैसे पिछली क्लास के अंदर ही पढ़ा था ना, इजमा से क्या साबित था कि नवासी और पोती और नानी और दादी से भी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई शादी तो करते ही उससे हैं कि जिससे कि शादी करना जायज़ होता है। अब आपके कह देने से कोई दायमी हुर्मत ही बन जाती है ना, कि तू मेरे बाप की, तू मेरी माँ की तरह है, या आप मेरी बहन की तरह है, या आप मेरी भांजी की तरह है। भाई तो कह देने से वो भांजी की थोड़ी बन जाएगी, क्योंकि वो भांजी तो थी नहीं कभी। अगर होती भांजी तो आप निकाह कर ही नहीं सकते थे ना उसके साथ, ठीक है। तो ये मतलब है कि कोई भी दूसरा सबब भी दायमी हुरमत का किसी भी दलील से मुतहक्क नहीं है, मसलन तहरीम नसब, रजात या मुसाहरत वगैरह। रजात और मुसाहरत का मतलब ये होता है कि जिसको दूध शरीक बहन कहते हैं, रजाई बहन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आप किसी को कह दें, अपनी बीवी को कह दें कि जी आप मेरी रजाई बहन की तरह हैं, तो भाई वो अगर रजाई बहन नहीं थी तो तभी तो आपने उनसे शादी करी थी। तो अब आपके कह देने से कोई थोड़ी रजाई बहन बनती है, रजाई बहन तो दूध माँ का दूध पीने से बनती है, उसने तो नहीं पिया आपकी माँ का दूध, तो फिर कैसे रजाई बहन बन गई आपके कहने से, ठीक है। तो ये सब ये जो मुंह के कौल होते हैं ना, तो इन मुंह के कौलों की शरीयत ने हर बात में इम्पोर्टेंस नहीं रखी है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके अंदर मुंह से कही भी बात फाइनल होती है, जैसे तलाक का लफ्ज ऐसा रखा है, ठीक है, कि वो आप टीवी ड्रामे के अंदर अगर अपनी बीवी को तलाक 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 बोल दें तो टीवी ड्रामे के अंदर भी तलाक हो जाती है, ठीक ठीक है ना, हंसी मजाक में आप जो है वो घर में ड्रामा करना शुरू हो जाए, ठीक, बीवी को तलाक बोल दें, तो वो मुंह का ही फेल है, वो कोई आपने उसको तीर पे थोड़ी मारा है, तलवार से को थोड़ी मारा है, ठीक है, मुंह से जुबान से ही एक जिसको हम कहते हैं साउंड वेव्स ही निकाली है ना तलाक वाली, तो उससे फिर बीवी हराम हो जाती है। उसी तरीके से कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान हो जाता है, ठीक है, और कोई कोई कुफर का कौल कह देने से बंदा काफिर हो जाता है, ठीक है। तो इन बातों में यानी इन मामलात में मुंह के कौल की अहमियत होती है, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मुंह में आए बोलना शुरू कर दो तो हर चीज़ की अहमियत होती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जैसे ये जो जिहार का मसला है तो इसमें ऐसा नहीं होता कि वो बीवी जो है फिर माँ बन गई या बीवी बहन बन गई, ऐसा ऐसा नहीं होता। अच्छा, और वो लोग जो कि बीवियों को माँ कहते हैं बिना शुबा एक नामाकूल और झूठ बात कहते हैं, इसलिए गुनाह जरूर होगा उनके ऊपर, क्योंकि मुनकर बात करी ना उन्होंने और झूठ बात करी, ठीक है, यानी एक झूठी है ना कि आप जो जो नहीं है उसको वो कह रहे हैं, तो ये भी तो झूठ की एक शक्ल ही है ना, तो झूठ का तो फिर गुनाह होता है। और अगर इस गुनाह का तदारुक कर दिया जाए तो वो गुनाह माफ भी हो जाएगा, ठीक है, यानी तौबा करने से तो वो गुनाह माफ भी हो जाएगा, क्योंकि यकीन अल्लाह ताला अफूवन गफूर है, यानी माफ कर देने वाले बख्श देने वाले हैं। अच्छा, अब आगे जो है ये शरी मसाइल आ रहे हैं कि आगे इस तदारुक का बाज़ सूरतों के एतबार से बयान है कि कैसे तदारुक करें इसका, हाउ टू निगेट दिस, ये जो आपने कह दिया बीवी को ना, तो अब इसको भी अल्लाह यानी शरीयत ने ऐसे ही छोड़ा नहीं, ठीक है, कि इस किस्म की तुम फजूल बातें जो है वो अपनी बीवियों के साथ करते फिरो और तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, ऐसा नहीं किया। भाई बीवियों की अल्लाह ताला ने ना बहुत ज़्यादा अहमियत रखी है, ठीक है, तो इस वजह से ना फिर आगे इसके मसाइल आते हैं कि क्या फरमाया आयत नंबर 3, वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम, और वो लोग जो कि जिहार कर लेते हैं अपनी बीवियों के साथ, थुम्मा यऊदूना लिमा कालू, फिर उसके बाद वो लौटना चाहते हैं, आदा यऊदू का मतलब होता है लौटना, तो अब वो लौटना चाहते हैं, रुजू करना चाहते हैं, यानी जो उन्होंने कहा है वो उसको एनल करना चाहते हैं, ठीक है, कैंसिल करना चाहते हैं उसको, तो वो क्या करें, फतहरीरु रकाबतिम मिन कब्ल अन यतमास्सा, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक गर्दन आज़ाद करें, तहरीर कहते हैं आज़ाद करने को, जैसे हुर हुर कहते हैं ना आज़ाद बंदे को, तो तहरीर का मतलब आज़ाद करना, और रकबा का मतलब होता है गर्दन, गर्दन आज़ाद करना, गर्दन आज़ाद करने का क्या मतलब होता है कि जिस तरह से यानी जो गुलामी का सिस्टम था पहले, तो वो कोई अगर लीगल गुलाम हो, ठीक है, तो उस गुलाम को आज़ाद कर देना, ये इसका कफारा होगा, मिन कबल अन यतमास्सा, इससे पहले कि वो अपनी बीवी को छू सके, यानी बीवी जो है उसके करीब ये नहीं जा सकता, ठीक है, तो उससे पहले उसको ये गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। तो साजिश के दिन में बात आई थी कि आप लोगों के साथ सूरह मोहम्मद शुरू की जाए, ठीक है, क्योंकि सूरह मोहम्मद के अंदर इस तरह के जैसे गुलामी के मसाइल वगैरह डिस्कस हुए हैं, कि बिल्कुल ये जो 8वीं जल्द है ना, इसमें पहली सूरत जो जहाँ से 8वीं जल्द शुरू होती है मार्फ कुरान की, वो सूरह मोहम्मद है, तो फिर वो क्योंकि काफ़ी उसके अंदर तफसील थी और लंबी थी वो सूरत रिलेटिवली, तो उस वजह से ना फिर 28वें पारे से स्टार्ट किया। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर मशवरा होगा कि अगर आपके पास वक्त है ना, तो सूरह मोहम्मद और फिर सूरह मोहम्मद के बाद सूरह फतह, ठीक है, इनकी तफसीर को इसी जिल्द में से खुद से भी स्टडी करें, ठीक है। तीसरी सूरत तो हम आपको पढ़ा चुके हैं इसी क्लास के अंदर, सूरह हुजरात, ठीक है, वो तो हमने क्लास में कवर कर लिया ना, लेकिन सूरह मोहम्मद और सूरह फतह ये मर्दों के लिए बहुत ज़बरदस्त सूरतें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो अगर सेल्फ स्टडी भी आप कर लें, लेकिन जाहिर है कि टीचर के बगैर तो सेल्फ स्टडी नहीं होती, यानी फ़ायदेमंद नहीं होती, तो उस वजह से कि सेल्फ स्टडी करें ज़रूर, लेकिन फिर एक रब्ता भी रखें कि चीज़ों को फिर ज़रा होता है ना कि आप कंफर्म रिकन्फर्म भी कर सकें किसी टीचर के साथ, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो पूछ लें, तो इस तरह की सेल्फ स्टडी जो होती है वो नुकसानदेह नहीं होती है, एज लॉन्ग एज आप किसी टीचर के साथ कनेक्शन में रहें। बहरहाल, تو غلامی کا مسئلہ ایک الگ ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ جو کہ کافی لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے غلامی وغیرہ. بہرحال کہ غلامی کی بڑی تفصیلات ہیں, آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے. بہرحال تو ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس واپس جائے. ذالکم توعظون بہ, تو اس سے تم کو نصیحت ہوگی, یعنی یہ تمہارے نا ذرا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر یہ کفارہ لگایا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ تم اپنی بیویوں کو لائٹلی نہ لیا کرو, ٹھیک ہے نا. یہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا, کوئی مذاق ہے یہ بیوی کو ماں کہہ دینا, ٹھیک ہے. تو ذرا تمہارے دماغ ٹھکانے ہیں نا, کیونکہ غلام جو تھا نا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی, غلام بہت زیادہ پیسوں سے آتا تھا, ٹھیک ہے. جیسے کہ آج جو ہے وہ آپ سے کوئی کہے کہ اچھا آپ نے یہ حرکت کری ہے نا, تو جائیں اپنی BMW کو ذرا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آئیں, ٹھیک ہے نا, تو اچھے خاصے وہ پسینے چھوٹ جائیں گے کسی ایمان والے کے. دوسرا تو کہے گا کہ میں نہیں جاتا بھائی, میں BMW کو کوئی خیرات ورات نہیں کرنے جا رہا ہوں, لیکن ایمان والا کہے گا کہ ہاں یار یہ تو ورنہ پھر جہنم کا عذاب, ٹھیک ہے, تو BMW کو خیرات کرنا پڑے گا. تو BMW کو خیرات کرنے کا آسان کام ہے, رائٹ, دماغ ٹھکانے آ جائے گا نا, صحیح. تو یہی مطلب ہے ذالک کیا ذالکم توعظون بہ, ٹھیک ہے, تاکہ تمہاری نصیحت ہو جائے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو, ٹھیک ہے. یعنی تم اگر نہیں کرو گے نا یہ, تو ڈونٹ وری, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے اگنور کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ تم سے نپٹیں گے, ٹھیک ہے, دنیا میں بھی نپٹیں گے اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی. ذالک کیا کذالک العذاب ولا عذاب الآخرت اکبر, آخرت کے اندر تو اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب دیں گے. بہرحال تو آپ کیا سوال پوچھ رہے ہیں کہ وداؤٹ انٹینشن کلمہ پڑھنے سے شہادت مسلم ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہ تو پھر ہم نے ایمان کی ساری تفصیلات جو پڑھی ہیں تو اس کا تو یعنی فائدہ کا مسئلہ تو ہوگا نا, کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر بغیر انٹینشن کے یعنی دل کے تصدیق کے بغیر اگر منہ سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان یعنی ہوتا تو نہیں ہے, ایمان والا تو نہیں بنتا ہے, لیکن اسلامی معاشرے کے اندر تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی والا سلسلہ تو نہیں ہے کہ جس سے کہ منافقین کا پتہ چل جائے, تو ایسے شخص کو اسلامی معاشرے کے اندر مسلمان باقاعدہ مانا جائے گا. اگر رجسٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے رجسٹریشن بھی کر لی جائے گی اس کے ایز اے مسلم, اس کو جو ہے وہ پاکستان کا بندہ ہے تو اس کے ID کارڈ کے اندر مسلم بھی لکھ دیا جائے گا, رائٹ, اور اس کو پھر لوگ جو ہے وہ اگر شادی کے لیے کہیں اپروچ کرے گا تو اس کو پھر اپنی بیٹی شادی کے لیے بھی دینی پڑے گی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی تو کیا پتا تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو زبان کی قول کا اللہ تعالیٰ نے اتنا تو رکھا ہے نا, باقی ہے کہ دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. Anyways, لیکن طلاق کے ساتھ ایسا نہیں ہے نا, طلاق تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر تو دل کی نیت بھی بالکل ہی ڈسریگارڈڈ ہے, ٹھیک ہے. اچھا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے تو غصے میں دی تھی, تو بھائی وہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ پھر خوش ہو کر کے کون اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. Anyways, آج کے دور میں کیا ادا کرنا ہوگا, وہ آ رہے ہیں ابھی آگے, ٹھیک ہے. اچھا فمن لم یجد, ٹھیک ہے, جیسے آپ کا سوال ہے تو اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دے رہے ہیں. فمن لم یجد, اور جس کے پاس غلام نہ ہو, ٹھیک ہے, فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, تو وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے گا, 60 دن, ٹھیک ہے نا, وداؤٹ اے سنگل گیپ وہ روزے رکھے گا, اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جا سکے, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور, فمن لم یستطع, اور جس کے اندر اس کی بھی استطاعت نہ ہو, بیمار ہو, بوڑھا ہو, نہ رکھ سکتا ہو 60 دن کے لگاتار روزے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی خیال رکھا کہ جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو, فاطعام 60 مسکینا, تو وہ 60 مسکین لوگوں کو کھانا کھلائے, ٹھیک ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ اس واسطے کہ تم تابع دار ہو جاؤ, یہ نہیں کہ تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر. ایمان والے تو تم پہلے سے ہو, جبھی تو تمہیں یہ شریعت کے حکم سے سنائے جا رہے ہیں. تو یہاں پر لتؤمنوا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم بندے بن جاؤ, رائٹ, ایمان والے تو تم بن گئے ہو, لیکن تم اپنے عمل کے اعتبار سے بھی بندے بن جاؤ. جیسے में कहते हैं ना, बंदे का पुत्र बन जाओ, ठीक है। तो ये लितुमिनु बिल्लाहि व रसूल ही कब यहाँ पे इस तरह से मफहूम बनेगा। जैसे अल्लाह ताला कुरान में एक और जगह शायद फरमाते हैं ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आओ। क्या मतलब भाई, पहले ईमान वाले जिन लोगों को पुकार रहे हैं तो अब उनको क्या कह रहे हैं कि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लेकर के आओ, ठीक है। तो पहले वाला जो ईमान है इसके अंदर वो तो है कि भाई तुमने इकरारुम बिलसान व तस्दीकुम बिलकल्ब कर लिया। अब अगला जो है ना आमिनो बिल्लाहि व रसूली, इसका मतलब ये है कि अब जो है ना तुम अताअत भी करना शुरू कर दो अल्लाह उसके रसूल की, ठीक है, बात भी मानना शुरू कर दो। यानी वहां पर भी दूसरा जो लफ्ज, दूसरा इस्तेमाल जो है ना ईमान के लफ्ज का, उसका मतलब यही है कि ताबेदार बन जाओ, बंदे का पुत्र बन जाओ, ठीक है। वतिल का हदूदुल्लाह, और ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, ये लिमिट्स हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई, बाउंड्रीज हैं अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर तुम्हें तुम्हारी मन मर्जी पर नहीं छोड़ा है, अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्ट्रिक्ट किया है इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने तुम्हें बाग में नहीं पैदा किया, ये जन्नत नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। ये तो तुम्हारे लिए क्या है, दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है, यहाँ पे तुम्हारे लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना। अपनी मर्जी से ही तुम सारे काम कर सकते हो, विद इन द बाउंड्स ऑफ शरिया तुम कर सकते हो, उसके बाहर नहीं जाके कर सकते, ठीक है। तो अगर इस तरह की जिंदगी गुजारोगे तो फिर मरने के बाद हम तुम्हें जन्नत देंगे, ठीक है ना, तो तुम्हारे लिए जन्नत नहीं है। तो ये हुदूद हैं अल्लाह ताला की मुतय्यन की हुई, दिल का हुदूदुल्लाही वलिल काफिरीना अजाबुन अली, और जो इन हुदूद का इनकार करने वाले लोग हैं, काफिर हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है जी। क्या फरमा रहे हैं कि ये तीनों कफारा की सूरतों में दर्जात का फर्क है या सहूलत पे डिपेंडेंट है? नहीं जी, ये दर्जात का फर्क है। जिसके पास गुलाम है ना, तो अब वो 60 रोजे नहीं रख सकता, उसको गुलाम आजाद करना होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जिसके पास गुलाम नहीं है, जैसे आज किसी के पास गुलाम नहीं है, ठीक है, तो उसको तो 60 रोजे रखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो ये कहे कि नहीं, 60 रोजे तो बड़े मुश्किल हैं, तो मैं जरा अच्छे अच्छा कमाने वाला हूँ, तो मैं 60 मिसकिनों को खाना खिला देता हूँ, वो तो सहूलत है मेरे लिए। नहीं, ये कफारा नहीं होगा, ठीक है, उसको 60 रोजे ही रखने पड़ेंगे। तो 60 मिसकिनों का खाली वो खाना खिला सकता है जो कि यानी किसी मेडिकल क्या कहते हैं, बाशरा मुत्तकी परहेजगार हकीम साहब से लिखवा करके लाए, या डॉक्टर साहब से लिखवा के लेकर के आए कि वाकई ये 60 रोजे अगर रखेंगे ना तो इनका तो हो जाएगा, यानी कबाड़ा हो जाएगा इनका, ठीक है। तो उनके फतवा यानी हकीम साहब जो होते हैं ना, उनका भी फतवा चलता है दीन इस्लाम के अंदर। इतनी आसानी कर दी हमारे लिए। अगर कोई आपको मुफ्ती साहब मेडिकल साइंस से यानी मेडिकल साइंस जानने वाले मुफ्ती साहब नहीं मिलते हैं ना, तो फिर आप कैसे सेहत का फतवा लेंगे? तो अल्लाह ताला ने फिर यानी शरीयत इस्लाम ने फिर जो दीनदार डॉक्टर होता है उसी को मुफ्ती का दर्जा दे दिया कि वो लिख करके दे दे कि भाई नहीं, ये नहीं रख सकते 60 रोजे, इनका जो है ना वो ऐसे ऐसे मसले खड़े हो जाएंगे, तो बस आप फारिग माशाल्लाह, फिर आप 60 मिसकिनों को बेशक खाना खिलाएं उसके बाद, ठीक है। वतिल का हुदूदुल्लाह वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, इन्नल्लज़ीना युहादूना अल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो मुखालिफत करते हैं, हादा या हादू, युहादू, हाँ हाँ ये इसका खैर, जो लोग मुखालिफत करते हैं अल्लाह ताला की और उसके रसूल की, कुबितु कमा कुबितल लदीन मिन कब्लिहिम, तो ख्वार हुए हैं जैसे कि ख्वार हुए वो लोग जो जो कि इनसे पहले थे। पाकिस्तानियों की बात हो रही है लगता है यहाँ पर, ख्वार हो रहे हैं, तो ख्वार होंगे जो अल्लाह ताला के हुक्मों की मुखालफत करते हैं ना, वो बस ख्वार ही रहते हैं बस, ठीक है, चाहे जितने वो झंडियाँ लगा लें और नारे लगा लें और दिन सेलिब्रेट कर लें, उनकी खारी ख़त्म नहीं होगी इससे, ठीक है। तो कुबितु जैसे उनसे पहले लोग खार हुए हैं, ठीक है, तो ये पहली दफ़ा तो नहीं है इस तरह की हरकतें हो रही हैं दुनिया के अंदर। तो कुबितु कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वक़द अनज़लना आयातिम बय्यिनात, और तहक़ीक़ के हमने नाजिल करी हैं आयतें बहुत ही साफ साफ खुली हुई, ठीक है। तो जिन आया जो इन आयात को पढ़ेगा समझेगा तो उसी को ये बातें समझ में आएंगी, और जो टीवी देखता रहेगा हैं, वो कौन कौन से आते हैं आजकल, शाहिद मसूद साहब के रिव्यू पता नहीं कौन कौन से आते रहते हैं, और फलाने एंकर के प्रोग्राम आते रहते हैं, और हालात हाजिरा के ऊपर चार बैठे हुए आपस में बहस मुबाहसा करते रहते हैं कि उन साहब ने ये कर दिया था, फिर फलाने साहब ने नहीं ये कर दिया, और उन्होंने ये इतना अच्छा किया और उन्होंने इतना बुरा किया, राइट। उनके पास जो है वो अल्लाह के आयात के लिए टाइम ही नहीं होता, तो उनको क्या खाक समझ में आएंगी ये सारी बातें। ठीक है भाई, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह ताला के कुरान के साथ अगर इस तरह का मामला करेंगे तो फिर खार ही होने वालों में बनेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला के कुरान की हमें एक साहब कहने लगे हमारे दोस्त कि उनके इलाके के एक बुजुर्ग थे, तो उनके बुजुर्ग यानी उन बुजुर्ग के पास कुछ लोगों ने आकर के इस तरह से कहा कि भाई वाकई हम बड़े बुरे लोग हैं, हम कुरान को ना सानवी हैसियत देते हैं, हम कुरान को सानवी हैसियत देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। तो उन बुजुर्ग साहब ने जवाब दिया कि अगर तुम कुरान को सानवी हैसियत देने लगो ना तो तुम्हारे हालात बदल जाएं, इस तरह की बात करी। ठीक है, अगर तुम कुरान को सानवी हैसियत देने लगो तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएं, तुम तो कुरान को दसवीं हैसियत देते हो, बल्कि दसवीं भी नहीं देते, दसवीं पोजीशन पे तुम नहीं देते कुरान को, राइट। अगर दसवीं से तुम सानवी पे लेकर के आ जाओ ना तो मसले ही हल हो जाए तुम्हारे, क्योंकि सानवी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, सानवी का मतलब ये होता है कि भाई अपनी जरूरियात जिंदगी जो होती है ना, खाना पीना, राइट, सवारी और घर, तो ये जो चार अल्लाह ताला ने शरी जरूरियात बनाई है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि इन शरी जरूरियात को तुम छोड़ दो और बैठ के मेरा कुरान पढ़ते रहो, ये को थोड़ी अल्लाह ताला की डिमांड है, राइट। अल्लाह ताला तो कहते हैं तुम अपनी शरी जरूरियात पूरी करो और साथ साथ पांच नमाजें पढ़ लिया करो, ठीक है ना। पांच नमाजें जो हैं ये फर्ज हैं, ये शरी जरूरियात की वजह से इनको आप कदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो पांच नमाजें आप पढ़ें और अपनी शरी जरूरियात को पूरा करें, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी जरूरियात जिंदगी को दें, फिर उसके बाद आप कुरान को वक्त दें, तो ये होगी सानवी हैसियत। तो ये तो परफेक्टली एक्सेप्टेबल है, अल्लाह ताला इससे ज्यादा की डिमांड नहीं कर रहे आपसे। मसला हमारा सानवी हैसियत का तो है ही नहीं ना, हम तो दसवीं हैसियत भी नहीं देते कुरान को, ठीक है ना। हमारे तो बच्चों के इसमें आए तो पहले जो है जी वो फिजिक्स को हमने हैसियत देनी है बच्चों की पढ़ाई में, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायोलॉजी को, फिर उसके बाद जो है वो मैथमेटिक्स को, फिर उसके बाद यानी ज्योमेट्री को, फिर उसके बाद जो है वो सोशल स्टडीज को, फिर उसके बाद जो है वो फ्रेंच को, राइट। फिर फ्रेंच भी हमारे बच्चों ने पढ़नी होती है, फिर उसके बाद कोई और भी लैंग्वेज होगी उसको भी पढ़वाएंगे, उसके बाद फिर एक और भी चीज़ पढ़वाएंगे, उसके बाद शायद दसवीं जो प्रायोरिटी है ना उसमें शायद कुरान आ जाए, शायद, राइट। और इसी तरीके से बड़ों की प्रायोरिटीज का भी यही हाल है, राइट। दावत में भी जाना है, खाने पे भी जाना है, उसके बाद फिर जो है वो क्रिकेट भी देखनी है, क्रिकेट खेलनी भी है और देखनी भी है, और उसके बाद क्रिकेट के स्कोर्स को फॉलो भी करना है, ठीक है ना। और उसके बाद भी अगर कोई एक दो स्पोर्ट्स होंगे तो उनको भी फॉलो करना है, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स की भी बारी आएगी, पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो हमने अपने मुल्क की पॉलिटिक्स भी फॉलो करनी है, फिर हमने दूसरे मुल्क की पॉलिटिक्स भी फॉलो करनी है, फिर उसके बाद हमने इस तरह की भी चार पांच और काम भी करना है, फिर उसके बाद अगर कुछ वक्त बच गया तो कुरान को भी देख लेंगे, राइट। तो ये तो दसवीं हैसियत भी हम नहीं दे रहे ना कुरान को, तो क्या ख्वार नहीं होंगे, तो क्या इज्जतदार बनेंगे फिर उसके बाद दुनिया के अंदर, राइट। और आखिरत में तो फिर उसके बाद वही होगा ना जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि आखिरत का अजाब तो दुनिया के अजाब से बड़ा होता है, तो आखिरत की ख्वारी दुनिया की ख्वारी से बढ़ करके होगी, ठीक है। तो कुबितु कमा कुबित अल्लदीन मिन क़ब्लिहिम वक़द अनज़लना आयातिन बय्यिनात, ये सारी बातें तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर खोल खोल के बयान करी हुई हैं। वलिल काफरीन अज़ाबुम मुहीन, और जो इनका इनकार करने वाले हैं तो उनके लिए एहानत यानी जलील कर देने वाला अजाब है उनके लिए, मुहीन एहानत करना, ना उसने मेरी एहानत कर दिया जी, उसने मुझे जलील कर दिया जी, तो मुहीन वाला जो अजाब होता है वो जलील और रुसवा कर देने वाला अजाब होता है। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन, कि जिस दिन अब अल्लाह ताला क़यामत के दिन का तذکرہ करते हैं, यौम के लफ्ज़ से शुरू करते हैं आयत को, ठीक है। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, कि जिस दिन काम नहीं आएंगे ना माल ना बेटे, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, सिवाय उसके कि जो कि एक सेहतमंद दिल लेकर के अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा। تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یوما کہ جس دن یبعثہم اللہ جمیعاً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا سب کو فینبئہم بما عملوا پھر سب کو بتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے. ما احصاہ اللہ ونسوہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ گن کر کے رکھے ہوئے. جی سوری مس کنیکٹ ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ گن کر کے رکھے ہوئے. احصا یحصی احسان کا مطلب ہوتا ہے گننا, ٹھیک ہے, کاؤنٹ کر کے رکھنا, یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ ریکارڈڈ ہے, پرفیکٹلی میجرڈ اینڈ کاؤنٹڈ اینڈ اکاؤنٹڈ فار. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ ہے. وہ نسوہ, اور یہ لوگ تو بھول گئے, کیونکہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم تو کرتے بھی ہیں نا, تو ہم اپنے ہی عمل بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا 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 تھا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی نہیں بھولا جاتا. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر شہید ہے, یعنی گواہ ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر میں اس کی چند باتیں ہیں, وہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ تو جہاں پر یہ شروع ہو رہی ہے کفارے کی بات کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے, نہیں, پیج نمبر 334 کے اوپر کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں اب پھر اپنی کہی ہوئی بات کی مقتضا کی جو تحریم میں زوجہ ہے تلافی کرنا چاہتے ہیں, یعنی جو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میری بیوی حرام ہوگی میرے اوپر, تو اب اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں, یعنی بیویوں سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جس کو سیکشوال پلیجر کا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فائدہ اٹھانا, یہ نہیں کہ بیوی سے کھانا بنانا اب منع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کھانا بنانا والا تو مسئلہ وہ تو ہے ہی ہمارا کلچرل, ٹھیک ہے, کہ بیوی سے مزے مزے کے کھانے بنوا کر کے خود بھی کھائیں اور اپنے پورے خاندان کو بھی کھلوائیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہمارے کلچرل سسٹم کی مصیبت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو بیوی سے نفع اٹھانا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ بیوی کی تو اس طرح کی کوئی ذمہ داری ہوتی بھی نہیں ہے کہ خاندان والوں کے لیے کھانا بناتی رہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہم نے ظلم کیا ہوا ہے بیویوں کے اوپر, تو اس ظلم کا پھر تو ہمیں حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور وہ ظلم خالی بیوی پر ظلم نہیں ہوتا, وہ ایکچولی ہم اپنی جان پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بیوی کو اس طریقے سے نا اپنے خاندان کی خدمت میں جھونک کر کے رکھتے ہیں نا, جس طرح سے کسی کو ایندھن کی طرح سے جھونکا جاتا ہے چولہے کے اندر, تو ہم اپنی ماؤں اور بہنوں اور اپنے خاندان کے دوسرے گھر والوں کی خدمت میں اپنی بیویوں کو جھونک دیتے ہیں, جس طرح لکڑی کو چولہے کے اندر جھونک دیا جاتا ہے. تو اس سے خالی بیوی پر ظلم نہیں ہو رہا ہوتا, یہ ہماری یعنی ایک تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ بیوی پر ظلم کر رہے ہیں, لیکن اگر چلو مان بھی لیں کہ بیوی پر ظلم کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, ہم اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں بیوی کی جو کیفیات بنتی ہیں نا, ان کیفیات کے بعد وہ آپ کے لیے پھر نا وہ کوئی رحمت نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اس سے بھی بڑھ کر کے وہ آپ کے بچوں کی اچھی ماں نہیں بن سکتی, پھر آپ کے بچوں کی اچھی ماں نہیں بن سکتی, اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اچھی ماں بننے کے لیے, کیونکہ آپ نے اس کے پاس وقت چھوڑا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی اچھی ماں بن سکے. ٹھیک ہے نا, تو آپ بیسیکلی اپنے بچوں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں جب بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نا, ماں باپ کی عزت کے نام پر, رائٹ, یہ تو ہمارے بہانے ہوتے ہیں نا ماں باپ کی عزت کے نام پر. ماں باپ کی عزت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی کسی دوسری مخلوق کو جو ہے وہ یعنی اس طرح سے ظلم کیا جائے اس کے اوپر, ہرگز نہیں, بالکل یہ مطلب نہیں ہے ماں باپ کی عزت کا, بالکل یہ مطلب نہیں ہے ماں باپ کی فرما برداری کا کہ اس کے جو ہے نا وہ بیوی کو لگا دیا جائے اس کام کے اوپر. بھائی آپ کے ماں باپ ہیں, آپ لگیں اس کام کے اوپر, رائٹ, یا اس کے لیے کوئی نوکر رکھیں, کوئی نوکرانی رکھیں, کوئی خادمہ رکھیں زیادہ سے زیادہ, رائٹ. بیوی کو آپ نے ماں باپ کی خدمت کے لیے بیاہ کر کے لے کر کے آئے, جہالت ہے یہ, بالکل جہالت ہے, اور اس کا عذاب سہ رہے ہیں لوگ, اور احساس نہیں ہمیں کہ ہم اس کے اوپر بھگت رہے ہیں, رائٹ. ہماری اب اولادوں کی دنیا اور دین برباد کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے, بیویوں کو جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں نا, تو اپنی بھی زندگی خراب کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اولاد کی زندگی بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں, اور آل آف دس ان دا نیم آف ریلیجن, سب دین کے نام پر, کہ دین کہتا ہے جی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, اب کہتا ہے تو خود کرو نا, تم بیوی سے کیوں کروا رہے ہو, اگر دین کہتا ہے, واقعی دین کہتا ہے, خود کرنے کو کہتا ہے, رائٹ. भाई बीवियों की से नफा हासिल करने का मतलब ये नहीं होता कि जी पकवा उनसे एक से एक खाने अपनी बहनों के लिए और अपने भाइयों के लिए, राइट। नफा हासिल करने का दूसरा मतलब है, ठीक है, और यहाँ पे उसी नफे का मतलब है अय्यतमासा, राइट, ये है नफा हासिल करना। ओके, तो उनके जिम्मे एक गुलाम या लौंडी का आजाद करना है कबल इसके कि दोनों मियाँ बीवी बाहम इख्तिलात करें, यह है नफा हासिल करना बीवी के साथ। और इसका भी रास्ता हमने खट्टा किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर भी फिर ना एक और मुसीबत आई हुई है कि बीवी ने जॉब करनी है, राइट, बीवी से जॉब करवाते हैं, राइट, सास पीछे पड़ पड़ करके जो है वो अपनी बहू से जॉब करवाती है। पहले तो वो डॉक्टर बहू लेकर के आती है, राइट, कि जी अच्छी पढ़ी लिखी बहू होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो आकर के ना वो भी कमाएगी, ठीक है, वो भी कमाएगी, मेरे बेटे का हाथ बटाएगी, ठीक है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, राइट। तो ये नफे हासिल करने हैं हमारे, ये बीवी की कमाई खा रहे हैं, बीवी के साथ जॉब से जॉब करवा रहे हैं और ये सब, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की रजा भी चाहिए हमें, जन्नत भी चाहिए। काफिर जो है फिर हमें कुछ कहीं भी ना है, हिंदू जो है वो हमें इज्जत भी दिया करें, इसके बाद हमने इज्जत दी है अल्लाह की मखलूक को, हमने बीवियों को इज्जत दी है, राइट, हमने बच्चों को इज्जत दी है, जो हिंदू हमें इज्जत देंगे, क्यों देंगे हमें इज्जत, वो है अल्लाह ताला के बंदे हैं वो हिंदू, अल्लाह ताला उनके जरिए से हमें जलील करवाएगा। ये जो है ना अजाब मुहीन, ये सिर्फ जहन्नुम की आग के जरिए से नहीं होता, ये हिंदुओं के हाथों भी होता है, राइट। और पाकिस्तान के अंदर हिंदू अगर नहीं है तो क्या हो गया, कादियानी तो है ना, राइट, पाकिस्तान के अंदर दूसरे लोग तो है ना, उनके हाथों भी अजाब मुहीन हो सकता है। अल्लाह ताला को हिंदुओं की हाजत नहीं है कि हिंदू होंगे तो मुसलमानों का अजाब मिलेगा, राइट, हिंदुओं के अलावा भी अल्लाह ताला अजाब मुहीन दिलवा सकता है, ठीक है ना। तो हम जुल्म करने से पहले सोच लिया करें कि हम पर भी जुल्म किया जा सकता है, ठीक है, बल्कि जुल्म अल्लाह ताला तो जुल्म नहीं करता, हम पर, हमसे इस जुल्म का हिसाब भी लिया जा सकता है इसी दुनिया के अंदर भी। तो इनके जिम्मे एक गुलाम या लौंडी का आजाद करना है कबल इसके कि दोनों मियाँ बीवी बाहम इख्तिलात करें सोहबत से या असबाब सोहबत से, ठीक है। तो जो सोहबत कहते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं, उसको यानी उसको इख्तिलात कहते हैं, या असबाब सोहबत भी, कि कोई ऐसा मामला किया जाए, बोसो किनार का मामला किया जाए कि जिससे कि फिर विच कैन लीड टू सोहबत, ठीक है, यानी सेक्सुअल इंटर को। आप लोगों को पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि इस क्लास के अंदर बच्चों को नहीं बिठाया गया, अगर किसी ने बिठाया हुआ तो अपनी जिम्मेदारी भी बिठाया हुआ, ठीक है। तो इस वजह से हमने तो भाई समझानी है ना बात, तो सोहबत यानी इंटरकोर्स और असबाब सोहबत यानी समथिंग दैट कैन लीड टू इंटरकोर्स, ठीक है, तो दोनों चीज़ें मनाएं। इस कफारे का हुक्म करने से तुमको नसीहत की जाती है, कफारे से अलावा तकफीर सय्यात के ये भी नफ़ा है कि इससे आइंदा को तुम्हें तंबीह हो जाए, ठीक है भाई, जो पहले बात हो चुकी है कि ज़रा तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ जाए। अच्छा, इसके बाद फिर टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर बाकी चीज़ें इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, किसी को अगर कोई सवाल है आज के टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ पूछ लीजिए। माफ़ कीजिएगा भाई, आप लोग माइंड कर जाते होंगे या जो भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि लोग अहवाल खोलते हैं अपने घरों के, तो इस वजह से इतनी जब बुरी बुरी बातें सामने आती हैं ना, और वो बस इसी बेवकूफ़ी की हरकतों की वजह से कि हम दीन को बहाना बना करके जो है वो दूसरों पर जुल्म कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ना आप लोगों के सामने इन चीज़ों को बयान करना होता है कि काश शायद कि कोई हमारी बात सुन करके समझ जाए और इस जुल्म से रुक जाए। तो इस वजह से ना ये आजिज़ तो बिल्कुल भी ये लड्डू खिलाने के मूड में नहीं होता, ठीक है, भाई जो है वो है, ठीक है ना, उसको आपने रोकना है, रोकना है तो क्लास का फायदा है, अगर नहीं रोकना है तो फिर आपको खाली हमने कहानियां सुनाने के लिए इस क्लास में नहीं बुलाया हुआ है, ठीक है। कोई सवाल अगर नहीं है तो फिर क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।